जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी जय गोपी जन वल्लभ गिरिवर धारी यशोदानंदन व्रज जन रंजन यशोदानंदन व्रज जन रंजन यमुना तीरावन चारी यमुना तीरावन चारी जय राधा माधव कुंज विहारी हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे जय राधा श्याम सुंदर राधा श्याम सुंदर राधे जय कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम कृष्ण बलराम जय वृंदावन धाम जय गौर हरिबोल हरिबो हरिबोल नितय गौर हरिबो जय जय प्रभुपाद 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 जय जय प्रभुपाद जय जय गुरुदेव 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 जय जय गुरुदेव जय श्रीमद्भागवत महापुराण की समागत वैष्णव मंडली की श्रीधाम वृंदावन की श्री गिरिराज गोवर्धन की श्री पुरुषोत्तम जगन्नाथ क्षेत्र की श्री नवद्वीप मायापुर धाम की अभय चरणारविंद भक्त वेदांत स्वामी प्रभुपाद की अस्माद आचार्य पर्यंतम गुरु परंपरा की हरे कृष्णा ऑल ग्लोरीज टू द असेंबल्ड डिवोटीज ऑल ग्लोरीज ओम अज्ञानतिमिरांधस्य ज्ञानांजनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं वन्देहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातम् सह गण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं श्री कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान सह गण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभो नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे नित्य लीला प्रविष्ट श्रीमद एसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की जय अष्टम स्कंध द्वाविंशति माने 22 अध्याय17वां श्लोक यया हि विद्वा यया हि विद्वानपि मुह्यते यत् స్తత్కొ విచష్టే గతిమాత్మనో యథా తస్మై నమస్తే జగదీశ్వరాయ వై నారాయణాఖిల లోక సాక్షిణే యయా హి విద్వానపి ముహ్యతే యత్ స్తత్కో విచష్టే గతిమాత్మనో యథా తస్మై నమస్తే జగదీశ్వరాయ వై నారాయణాఖిల లోక సాక్షిణే యయా హి విద్వానపి ముయ్యతే యత్ స్తత్కో విచష్టే గతిమాత్మనో యథా తస్మై నమస్తే జగదీశ్వరాయ వై నారాయణాఖిల లోక సాక్షిణే यया जिस भौतिक ऐश्वर्य से ही निस्संदेह विद्वान अपि विद्वान भी मुह्यते मोहित हो जाता है यतः आत्मनियंत्रित तत् वह कह कौन विचष्टे ढूंढ सकता है गतिम उन्नति आत्मनः आत्मा की यथा भलीभांति तस्मै उनको नमः सादर नमस्कार करता हूँ। ते आपको जगत ईश्वराय ब्रह्मांडे के स्वामी को वही निस्संदेह नारायणाय भगवान नारायण को अखिल लोक साक्षिणे समस्त सृष्टि के साक्षी। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामीनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। भौतिक ऐश्वर्य इतना भ्रामक होता है कि विद्वान तथा आत्मसंयमी व्यक्ति भी आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य को खोजना भूल जाता है, लेकिन पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान नारायण जो ब्रह्मांड के स्वामी हैं अपनी इच्छा अनुसार प्रत्येक वस्तु को देख सकते हैं, अतएव मैं उन्हें सादर प्रणाम करता हूं। ये प्रह्लाद जी कह रहे हैं। प्रह्लाद के मात्र दो ही श्लोक हैं प्रह्लाद जी के। जब बलि को बांध दिया गया, गरुड़ ने वरुण पास से बांध दिया और बलि ने उस अवस्था में भी, यहां पे श्रील विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद कहते हैं कि सत्य से जो भ्रष्ट हो जाता है, जो वचन दिया गया है उससे अगर कोई भ्रष्ट हो जाता है तो उससे अच्छा है नरक गामित्व। आपने वचन दिया और आप उसको पालन नहीं कर पा रहे हैं, या फिर आप अगर पालन करेंगे तो आपको भयंकर हानि होगी, अन्यत्र किसी को हानि हो जाएगा, लेकिन आपने वो वचन पालन किया। बलि पूरे स्वर्ग के राजा बन चुके थे, अब एक राजा के अधीन कितने प्रजा होते हैं, तो सभी उनके ऊपर निर्भरशील होते हैं। अब राजा कहीं राज्य च्युत हो जाए अकस्मात तो क्या हो जाएगा, फिर देवता हावी हो जाएंगे, मारकाट होगी, लोग मरेंगे, और फिर वो पद भ्रष्ट, राजा का पद भ्रष्ट होना यानी पूरे देश का, पूरे साम्राज्य का पद भ्रष्ट होना। लेकिन विश्वनाथ पाद कह रहे हैं कि ऐसी अवस्था में अगर सत्य का चयन करने में तुम्हें सब कुछ हानि सहन करना पड़े, इवन दो आपको अगर नरक में भी जाना पड़े तो वो वर्णनीय है, लेकिन सत्य से मार्ग भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। देखिए प्रभुपाद जी क्या कहते हैं। को विचष्टे गतिम आत्मनो यथा शब्द सूचित करते हैं कि जब मनुष्य भौतिक ऐश्वर्य का स्वामी होने की झूठी प्रतिष्ठा से फूल जाता है, इंद्रियों का धर्म होता है विषयों का ग्रहण करना, पंचेंद्रिय पांच विषयों का रूप रस स्पर्श वर्ण गंध का ग्रहण करना चाहता है, उसी से उसको सुख प्राप्त होता है। जो अंधा होता है उसमें काम की वासना कम होती है क्योंकि उसको दिखता नहीं है ना। तो एक इंद्रिय का उदाहरण से हम समझ सकते हैं जिनके पांच इंद्रिय भली भांति हैं उनके मन में कितनी वासनाएं होंगी, और वो इंद्रियां विषयों के प्रति धावित होता है, उसका स्वभाव ही है। आप एक लड्डू रख दीजिए और एक बच्चे को छोड़ दीजिए तो तुरंत जाके वो उसको पकड़ेगा, तो वैसे ही इंद्रियां जो हैं अपने विषयों के प्रति धावित होते हैं। और ये जितनी भी प्रक्रियाएं हैं, चाहे वो वेदांत हो, चाहे योग शास्त्र हो, चाहे पतंजल सांख्य, जितने भी दर्शन हैं उसमें गूढ़तम विषय यही होता है कि इंद्रियों को विषयों से संयत करना, यही मुख्य विषय है। अब क्या कह रहे हैं प्रभुपाद जी, देखिए। भौतिक ऐश्वर्य इतना भ्रामक होता है, इस श्लोक में देखिए, यया ही विद्वान अपि मुह्यते यत। दुर्गा सप्तशती के चतुर्थ अध्याय में एक श्लोक व्यासदेव जी लिख रहे हैं, कि यत विद्वांसमपि कर्षति सैव सा एव माया। माया की परिभाषा, द डेफिनेशन ऑफ माया क्या है, कि या विद्वांसमपि कर्षति, वही माया है। तो विद्वान को कर्षण करना क्या है, जैसे हम कई बार नहीं कहते हैं कि वो तो बच्चा है उसने कर दिया, ठीक है आप तो बड़े हैं ना, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए था। हम कहते हैं ना बच्चे के बाप को, आप भी वैसा ही कर रहे हैं जैसा बच्चा करते हैं। तो कहने का तात्पर्य है उनको ऐसा नहीं करना चाहिए था। तो विद्वानों को मार्ग भ्रष्ट पथ भ्रष्ट नहीं होना चाहिए, लेकिन होता है, ये श्रीमद् भागवत पुराण बता रही है। यया ही विद्वान अपि मुह्यते यत्, कितनी प्रबल है माया कि विद्वान भी मोहित तो हो जाते हैं। सत्को विचष्टे गतिमात्मनो यथा, तो आपकी गति को कौन जान सकता है। वेदांत कहता है कि जो आत्मा है वो मन को जानता है। आप अभी जान रहे हैं ना कि मन आपका कहां है, आप कथा सुन रहे हैं या कहीं और गया है मन, आपको पता है। हर एक जीव को जागृत अवस्था स्वप्नावस्था के भी साक्षी वो स्वयं होते हैं। आपने जो कर्म किया है भले कोई ना देखे, लेकिन आपकी अंतरात्मा तो कहती है ना कि हमने ये गलत किया। और स्वप्नावस्था में भी तभी उठ के कहते हैं अरे रात को इतना स्वप्ना देखा, मैं पानी में डूब रहा हूं, मैं चिल्ला रहा हूं, तो उसको याद है। लेकिन जो सुसुप्ति की अवस्था है उस अवस्था में वो व्यक्ति स्वयं जो है साक्षी नहीं होता है, उसका साक्षी सिर्फ परमात्मा होती है। ठीक है, तो कहने का तात्पर्य है कि जीव साक्षी नहीं हो सकते। तत्को विचष्टे गतिमात्मनोजरा, आप आत्मा की गति को कौन जान सकता है। आत्मा मन को जानता है लेकिन मन आत्मा को नहीं जान सकता, मन नहीं जानता। तस्मै नमस्ते जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे। ये जो साक्षी शब्द है इसी के ऊपर पूरी टीका लिखी गई है, विश्वनाथ चक्रवर्ती पाद ने, श्रीधर गोस्वामी ने, रामानुजाचार्य ने साक्षी शब्द के ऊपर ही टीका लिखी है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है और इसी से सारे सिद्धांत निष्पादित हो जाएंगे। तो निश्चित रूप से वह आत्म साक्षात्कार के लक्ष्य की उपेक्षा करने लगता है। आधुनिक जगत की ऐसी ही स्थिति है, भौतिक ऐश्वर्य में तथाकथित वैज्ञानिक प्रगति के कारण लोगों ने आत्म साक्षात्कार के मार्ग को पूरी तरह त्याग दिया है। व्यवहारिक दृष्टि से कोई भी व्यक्ति ईश्वर, ईश्वर के साथ अपने संबंध या वह किस तरह कर्म करें, इन सब के विषय में रुचि नहीं रखता। आधुनिक व्यक्तियों ने ऐसे प्रश्नों को सर्वथा भुला दिया है क्योंकि वे भौतिक संपत्ति के पीछे पागल हुए रहते हैं। यदि इस प्रकार की सभ्यता जारी रही तो शीघ्र ही वह समय आ जाएगा जब पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान सारा भौतिक ऐश्वर्य छीन लेंगे। ये निष्कर्ष दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद, तब लोगों की आंखें खुलेंगी। अब क्या है, यहां पे एक पीछे का जो श्लोक है 16वां श्लोक पढ़ेंगे तो ये प्रभुपाद की बात और स्पष्ट हो जाएगी। 16 प्रहलाद जी पहले आके ये कह रहे हैं, प्रहलाद जी क्यों कह रहे हैं, बलि को तो वरुण पास से बांध के गिरा दिया गया, अब वो नतमस्तक होके भगवान की स्तुति कर रहा है। तो आप सबको छीन भी लो, भगवान ने एक प्रकार से छल ही किया है ना, भगवान ने छल करके सब छीन लिया। अब बलि कहीं मानसिक अवसाद में ना चला जाए, सब कुछ छीन भी गया और मैं वचन भी पालन नहीं कर पाया। शुक्राचार्य को तो इसी चीज का डर था कि ये जो है ये सत्यनिष्ठ है, ये सब कुछ जो है सत्य के मापदंड से तोल के ही ये कार्य करेगा। इसीलिए सूचित कर दिया था कि ये यज्ञ पुरुष नारायण है, ये तुम्हें छलने आया है। तथापि वो कह रहे हैं मैं अपने वचन से विचलित नहीं हो सकता, तो आत्मसमर्पण के उत्कृष्टतम उदाहरण है बलि महाराज और अपने वचन की सत्यता पालन के उत्कृष्टतम उदाहरण है। तो कहीं वो अवसाद से ग्रसित ना हो जाए, सब कुछ चला भी गया, मेरा वचन का भी रक्षा नहीं हुआ और तीन पग भूमि में दे भी नहीं पाया। लेकिन भक्त तो भक्त होते हैं, तो क्या कह रहे हैं कि पदम तृतीयम कुरु शीर्षनी मेन निजम, आपके तीन तीसरा जो पग है वो मेरे माथे पे धारण कर दीजिए। अब यहां पे देखिए इसी प्रसंग में प्रहलाद क्या कहे, त्वयैव दत्तम पदम इंद्र ऊर्जितम। ये जो विशाल काय पद है इंद्र का, पूरे स्वर्ग का साम्राज्य, यहां पे टाटा बिड़ला आदि कितने बड़े होते हैं, उनके पास छोटा सा ही कारोबार होता है। उस हिसाब से आप सोचो जो स्वर्ग के ये राजा हैं उनके पास, अभी तो इतनी लड़ाई होती है, शतक क्रतु कहा जाता है ना, 100 यज्ञ करने के बाद वो पद मिलता है। अब कोई यज्ञ करने लगता है तो इंद्र को चिंता होती है तुरंत कि मेरी गद्दी तो कहीं हिल नहीं रही है, तो इसीलिए तुरंत वो पहुंच जाते हैं उसको कहीं ध्यान भटकाने के लिए। अब यहां पे प्रहलाद जी बड़े सिद्धांत की बात कर रहे हैं, त्वयैव दत्तम, आपने ही तो दिया था, बलि महाराज जी का जो था वो साम्राज्य स्वर्ग प्राप्त हुआ वो बलि महाराज ने स्वयं बनाया था क्या? लोग कहते हैं हम बहुत दानी हैं, हम जो हैं गरीबों को बहुत कुछ दान देते हैं, सोना भी दान देते हैं, तो आप पैदा हुए थे ले आए थे तब वो सारी चीज, आप जो दान दे रहे हैं वो सारी चीज आप लेके आए थे क्या? प्रकृति से ही तो दोहन करके दे रहे हैं ना, और आपको जो प्राप्त हुआ है वो भी आप किसी से मिला है, पिताजी का घर मिला है, प्रभुपाद जी का आश्रम मिला है, तो हमें कहीं से तो मिला है ना, हमने थोड़ी बनाया। तो वही बात प्रहलाद जी कह रहे हैं कि त्वयैव दत्तम, आपने ही तो दिया था, बलि महाराज जी के पास जो ऐश्वर्य बल ये तो आपने ही दिया था, इंद्र को ठग के आपने इनको दिलवा दिया। हृतम तदेवाद्य तथैव शोभनम, और आज अद्य त्वया एव हृतम, आपने ही चुरा लिया, हरण कर लिया, हरिहरणे धातु, आपने ही छीन लिया है, तो तदैव शोभनम, इससे अच्छा और क्या हो सकता है। भाई कोई कहे भाई मेरे पास छुट्टा नहीं है, 500 का तुम दे दोगे? हाँ चलो कोई बात नहीं, मैं तुम्हारा पेमेंट कर देता हूं, आपने दवाई खरीदा और मैंने पेमेंट कर दिया। फिर कुछ दिनों बाद तुमने जेब से नोट निकाला, मैंने 500 का नोट ले लिया, तो ये क्या छीनना कहा जाएगा इसको? हम छीन रहे हैं आपका धन? नहीं छीन रहे हैं। तो वही कह रहे हैं त्वयैव दत्तम और त्वयैव हृतम, आपने दिया था और आपने ले लिया। पिताजी चाहे तो बच्चों को अपने अपार्टमेंट में रहने दे सकते हैं, अभी तो सुप्रीम कोर्ट का भी लॉ आ गया है, और वो कह दें कि तुम नहीं रह सकते तो आप नहीं रह सकते, तो इसमें किसी का हरण करना नहीं कहा जाएगा। मन्ये महानश्य कृतो यनुग्रहो, प्रहलाद जी कह रहे हैं देखो इंद्र से भी तो पद छिन गया था ना, इंद्र राजा थे, इंद्र से पद चला गया था, बलि को आ गया था, लेकिन यहां पे एक शब्द का प्रयोग कर रहे हैं प्रहलाद जी कि मन्ये, मैं से मानता हूं, महानश्य कृतो यनुग्रहः, अनुग्रह महान कृतः, आपने बहुत बड़ी कृपा कर दी है, क्योंकि इंद्र का आपने पद ऊर्जितम पदम त्वया हृतम, आपने हरण कर लिया था, लेकिन बलि के चरण में आपने अपना पैर को रखा है, अपने चरण को आपने स्पर्श करा है, ये सौभाग्य है बलि का। और जिनके मस्तक पे भगवान के चरण विराजमान हो जाए उनका दुख हो ही नहीं सकता, ये बात बलि की पत्नी विंध्यावली आगे श्लोक में कह रही है। अच्छा फिर देखिए अंतिम लाइन, विभ्रमशितो यच्छ्रियः आत्ममोहनात्, तो हमें जो प्राप्त होता है, इसी से यही ज्ञात हुआ, हमें जो प्राप्त होता है वो हमारा वस्तुतः नहीं है, और ये वेदांत का ही सिद्धांत है ये, पूरा जो वेदांत है इसी से भरा हुआ है। वेदांत कहते हैं दृष्ट भागानाम निराकरणम अदृष्ट भागानाम स्वीकरणम, जो दिख रहा है उसका निराकरण करो। ये शरीर तो दिख रहा है ना, यहां पे सभी शरीर बैठे हुए हैं, तो इसका निराकरण करो। शरीर तो जड़ है ना, और ग्रहण किसको करना चाहिए, ये सभी आत्मा है, जीवात्मा है, और वो नित्य शाश्वत है। तो यहां पे जो भी बलि महाराज जी को मिला था, अगर किसी का कोई धन संपदा चला जाए और वो मुह्यमान होके रोदन करे, तो इसके लिए कथा जरूरी है कि हम कुछ भी लेके नहीं आए हैं, जो भी है भगवत प्रदत्त है। और अगर ऐसा विश्वास होगा, रक्षिष्यति विश्वासो गोप्तृत्य वर्णम तथा, ये अगर शरणागति के लक्षण होंगे, तो भगवान कह रहे हैं ना कि योगक्षेम वहाम्यहम्, ऐसी अगर निष्ठा हो जाएगी आपकी, जो भी हो रहा है आपकी कृपा से, मिले ठीक है ना मिले ठीक है, हो तो अच्छा ना हो तो और अच्छा, यदृच्छ लाभ संतुष्ट होके अगर कोई जीवन व्यतीत करता है तो उसको प्रारब्ध के अनुसार सब कुछ मिल ही जाता है, अलग से कोई प्रचेष्टा करने की आवश्यकता नहीं होती है। और जो मिल जाती है भगवत कृपा से, वो हमेशा अचल होती है। हमारे द्वारा अर्जित धन सचल होता है और भगवत प्रदत्त धन अचल होता है। भगवान का एक नाम है स्थाणुर अचलोयम, नित्यम स्थाणुर अचलोयम, विष्णु सहस्र नाम नीति। तो अच्छा, नमस्ते तस्मै जगदीश्वराय वै नारायणाखिल लोक साक्षिणे, अखिल लोक साक्षिणे, सभी लोकों के आप साक्षी हैं। ये कौन कह रहे हैं? प्रहलाद महाराज कह रहे हैं। देखिए, साक्षी शब्द को समझना है, बहुत गूढ़ विषय है। साक्षी शब्द का क्या अर्थ होता है? दो हो तभी साक्षी होंगे ना, एविडेंस जिसको कहते हैं। तो मैंने आपको वो करते हुए प्रभुपाद को माला पहनाते हुए देखा, अब मैं साक्षी हो गया। तो यहां पे द्वैत का प्रतिष्ठापन हो रहा है। द्वैत सिद्धांत तो जो है ना माध्वाचार्य के, हमारा संप्रदाय कौन सी संप्रदाय है? ब्रह्म माध्व गौड़ीय संप्रदाय। तो मध्वाचार्य के द्वैतवाद को हम स्वीकार करते हैं। तो द्वैत दृष्टि से क्या है कि जहां पे साक्षी की बात आए तो वहां पे दो जरूर होंगे, तभी तो साक्षी होगी ना। तो ये अद्वैत का खंडन हो गया। अखिल लोक साक्षिणे मतलब लोक हैं और आप साक्षी हैं, आपका साक्षी कोई नहीं है। प्रह्लाद कह रहे हैं कि ये जो पूरे अहमेव समय वाग्रे नान्यत यत सदसत परम पश्चाद अहम यो अवशिष्येत सोस्मी अहम, तो शुरू से पहले मैं ही था। पिता पुत्र का साक्षी होता है, पुत्र पिता का साक्षी नहीं हो सकता। कोई कहता है अरे मैंने यहां पे 10 साल पहले जमीन लिया था, उस समय एक भी घर नहीं था और मैंने सबको बनते हुए देखा। तो सभी के साक्षी वो हैं, उनके साक्षी वहां पे बैठे हुए कोई नहीं है। उन्होंने देखा भी नहीं था कि पहले जगह कैसी थी, नाली था नदी था वहां पे पहाड़ था, किसी ने देखा भी नहीं है। तो भगवान अहमेव समय वाग्रे बीज रूप में सृष्टि के अनादि अनंत से मैं ही था, मेरे से ही यस्मात् सर्वम जायते जन्माद्यस्य यतः, जहां से उत्पत्ति हुई है। और फिर क्या कह रहे हैं? पश्चाद हम यो अवशिष्येत, जो बचेगा सोस्मी हम, वो मैं ही हूं। तो ऐसी किसी की कल्पना कर सकते हैं हम? जीव जो पहले भी था और बाद में भी होंगे, जीव में तो ऐसा नहीं होता है। होता है क्या? नहीं होता है। तो एकमात्र भगवान ही कह सकते हैं। इसी बात को प्रह्लाद जी परिपुष्ट कह रहे हैं कि आप अखिल लोक साक्षी हैं। अखिल लोक एकत्व विघात का साक्षी, ये जो डेफिनेशन है साक्षी शब्द का, एकत्व विघात का साक्षी। जहां पे हम साक्षी शब्द कहेंगे तो वहां पे जरूर दो व्यक्ति होंगे, यानी प्रकृति और पुरुष। द्वैत हो गया, प्रकृति और पुरुष का सिद्धांत हमने स्थापित कर दिया। और जन्मादि यतः, जहां से उत्पत्ति हुई है, तो भगवान से इन जगतों जगत की उत्पत्ति हुई है, तो साक्षी कौन हुए? पूर्व साक्षी होंगे ना, जो पूर्व में प्रेजेंट होंगे वही साक्षी होंगे, तो भगवान, यही शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। अच्छा, अब देखिए, इससे मैं अद्वैत भी सिद्ध कर देता हूं, लेकिन वो अद्वैत भी द्वैत परक होगा, इन अकॉर्डेंस विथ द्वैत सिद्धांत। कैसे? न अखिल लोक साक्षिणे आप एक ही हैं, साक्षी जो हैं, हमने आपको माला पहनाया और इसको किसी ने नहीं देखा, कोई नहीं जानता, तो साक्षी कौन हुआ? मैं ही हुआ ना, मैं ही साक्षी हूं, और तो कोई है नहीं। और तीसरा व्यक्ति, आपका मन में यह प्रश्न आ सकते हैं, यहां पे तो प्रह्लाद महाराज जी कह रहे हैं, बलि और वामन के बीच में हुआ, और प्रह्लाद महाराज जी कह रहे नहीं, प्रह्लाद महाराज जी भी भगवान के निरीक्षण में है, क्योंकि अनंत का साक्षी अनंत ही हो सकता है, और भगवान के अलावा कोई अनंत है नहीं। ठीक है, तो प्रह्लाद महाराज कह रहे हैं कि साक्षी, पूरे जगत के साक्षी एकमात्र आप ही हैं, ये है अद्वैत। यू आर द ओनली एविडेंस ऑफ द एंटायर क्रिएशन। तत्र द्वैतम नास्ति तत्र अद्वैतम वर्तते। ये जगत क्या है? भोग्य है, और भोक्ता कौन है? भगवान। तो जो भोक्ता होते हैं वो भोग्य के साक्षी होते हैं। जैसे आपने आपके थाली में भोजन परोसा गया, तो भोजन आपका साक्षी नहीं है, जड़ कभी चेतन का साक्षी नहीं हो सकता, चेतन जड़ का साक्षी होता है। वही थाली आपके लिए परोसा गया, आप थे नहीं, कोई आके दूसरा प्रसाद पा गया, तो ये कोई उसका साक्षी बनेगा क्या? भोजन नहीं बन सकते। तो जगत भोग्य है, भोक्ता कौन है? भोक्ता पुरुषोत्तम भगवान है। तो इसीलिए भगवान के लिए ये जगत भोग्य है, और भोक्ता ही साक्षी होते हैं, भोग्य कभी साक्षी नहीं हो सकता। अब देखिए एक विषय, एक महाभारत की कथा सुनाता हूं कि ये वामन अवतार और बलि अवतार के पीछे कारण क्या है। तो भगवान जब भी कुछ भी करते हैं तो उसके पीछे कुछ कारण होता है। एक बार क्या हो रहा था कि कश्यप और अदिति गर्भ के गर्भ से ही आए थे ये वामन भगवान, तो कश्यप बड़े अच्छे विद्वान थे, सारा सुर असुर उन्हीं से उत्पत्ति हुई ना, तो कितने बड़े विद्वान होंगे वो, कितने बड़े शास्त्रज्ञ होंगे। ब्रह्मा जी ने भी सृष्टि का प्रारंभ किया तो आकाशवाणी यही हुई, तपह तपह तपह, विदाउट ऑस्टेरिटी यू कैनॉट डू एनी ग्रेट क्रिएशन। चाणक्य का श्लोक है कि तपे राजन, भाग्य भार्या पुण्य पुत्र तपे राजन, भाग्य से पत्नी मिलती है, पुण्य से पुत्र मिलता है, अच्छे पुत्र, और तपे राजन, जो तप करता है उसी को राजा की पदवी प्राप्त होती है। तो कश्यप जी के पास बालखिल्य ऋषि उनके आश्रम में गुरुकुल में पढ़ते थे। बालखिल्य ऋषि के बारे में आपने पढ़ा होगा, सूर्य के प्रसंग में आया है श्रीमद् भागवतम के। वो वृद्धांगुष्ठ परिमाण थे, इतने छोटे छोटे शरीर था उनका, 60,000 ऋषि थे और इतने ही बड़े थे छोटे। तो वो उनको एक दिन उनके गुरु ने कहा कि जाओ समिधा लेके आओ यज्ञ के लिए। तब ये 60,000 ऋषि चले गए जंगल को। अब समिधा और लकड़ी में अंतर होता है, तो गांव वालों ने कहा कि समिधा चाहिए तो आप ले जाओ यहीं से, तो खाना तो आप किसी भी लकड़ी में पका सकते हैं, लेकिन समिधा के लिए आपको जंगल के अंदर प्रवेश करना पड़ेगा, अन्वेषण करना पड़ेगा, क्योंकि पलाश बिल्व आम्र कुछ वृक्ष के ही समिध बनते हैं। जिस प्रकार की भगवान की आप उपासना करेंगे उस प्रकार की समिधा की आवश्यकता होती है। तो समिध लेने गए, समिधा लेने, पलाश की लकड़ी मिली, अब वो थे इतने छोटे, अब उन्होंने छोटे छोटे काटे हैं, अब काट के जो है उसको बांधा है और कंधे पे लिया है, उनके लिए बहुत बड़ा लक्कड़ है वो, और वो कश्यप ऋषि के आश्रम को आ रहे थे। अब वहां पे कामधेनु के खूर से गड्ढा हो गया था और उसमें पानी भर गया था, तो ये चल पड़े, पैर फिसला और वहां पे गिर पड़े, और गिरने के बाद वो तैरने लगे उतना छोटा, और लकड़ी के सहारे वो तैर के जो है वो गोस्पद को बालखिल्य ऋषियों ने पार किया। उस समय ऐरावत में सवार होके इंद्र जा रहे थे, इंद्र ने देखा और छोटे छोटे बालखिल्य ऋषि देख के उन्होंने बहुत बड़े बहुत जोर से ठहाके लगाए, हा 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 हा, एनम पश्य। तो इतना सुनते ही बालखिल्य ऋषि को आया गुस्सा, ब्रह्म तेज है भगवान, जब सूर्यदेव चलते हैं तो उनके आगे बालखिल्य ऋषि स्तुति करते हुए चलते हैं, तो सूर्य से अधिक तेज है, गति है और तपस्वी हैं। तो उन्होंने कहा रे मूर्ख, इंद्र को कहा, तो इंद्र को मूर्ख शब्द से संबोधित करना बालखिल्य जैसे ऋषि ही कर सकते हैं, रे मूर्ख जा, तू आज मुझे देख, हमें देख के हंसी उड़ा रहा है, हम हमारी सभी की आकृति देख के तेरा भी एक दिन स्वर्ग लोक छिन जाएगा, ठीक है, और तुम्हारे अंदर ये जो मद उन्मत्तता है धन ऐश्वर्य के कारण ये समाप्त हो जाएगा, तो तुम सामान्य बनोगे, फिर तुम किसी को हंसने के योग्य नहीं रहोगे। इतना सुनते ही अब इंद्र को तो पता है, कभी कभी हंसी निकल जाती है फिर बाद में पता चला ये तो अनुचित था, तो इंद्र आए, उतरे, आके साष्टांग दंडवत करके कहा कि हे प्रभो क्षमा कर दीजिए, मेरा उद्देश्य आप लोगों का हंसी मजाक नहीं उड़ाना था, लेकिन हो गई है गलती, अब हम क्या करें। तो कहा देखो ये ब्रह्म वाक्य है, हमने हमारे मुख से, शुद्ध ब्राह्मण के मुख से, वैष्णवों के मुख से निर्गत वाणी अब वापस नहीं हो सकता, लेकिन हां तुमने जब क्षमा मांग लिया है, ब्राह्मण बहुत जल्दी खुश भी होते हैं बहुत जल्दी रूठ भी जाते हैं, क्षणे तुष्ट क्षणे रुष्ट, तो कहा कि जब तुमने मांगा ही है तो मैं तुम्हें वरदान देता हूं कि तुमने हमारे आकृति देख के हंसा है ना, तो कोई ऐसे ही छोटे आकृति वाले आएंगे और उस दैत्य से, जो दैत्य तुम्हारा साम्राज्य का हरण करेगा, उससे वो साम्राज्य छीन लेंगे और तुम्हें प्रदान करेंगे। तो ये बालखिल्य ऋषि का वचन था, ये महाभारत के आदि पर्व में बालखिल्य ऋषि के वचन के लिए भगवान आए और इंद्र का भी पद चला गया, बलि महाराज जी की भी ये लीलाएं हुई हैं। तो एकत्व विघात का साक्षी, साक्षी किसको कहते हैं, जो एकत्व का विघातका हो, माने जहां एक नहीं हो सकता, साक्षी तभी माना जाएगा जब वहां पे दो हों, तो इसे द्वैत का प्रतिपादन हो गया, और अद्वैत का प्रतिपादन इस प्रकार से होता है कि अखिल लोक साक्षिणे त्वम, आप ही पूरे लोक के साक्षी हैं, नान्यत कोपी, और कोई नहीं है, यहां पे अद्वैत हो गया। ये हमारे वैष्णवों की दृष्टि से अद्वैत है, अद्वैतवादियों की दृष्टि से अद्वैत दर्शन अलग होगा, और हमारे वैष्णवों की दृष्टि से ये अद्वैत दर्शन है। यहां पर बहुत छोटी सी सूक्ष्मता है। अब देखिए यहां पे विंध्यावली की जो स्तोत्र है 20, देखिए विंध्यावली बहुत अच्छी भक्तिमती स्त्री है, ठीक है, और ये भी कारण है कि बलि इतने बड़े महादानी हैं, पत्नी भी सहधर्मिणी बोला जाता है ना, तो सहधर्मिणी भी समभाव को प्राप्त हो, दानी हो, सच्चरित्रा हो और भक्तिमती हो, तो उससे जो पति है उनका भाग्य वर्धन होता है। यहां पे देखिए कितनी बड़ी बात कह रही है विंध्यावली। श्री विंध्यावली रुवाच, क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते स्वाम्यं तु तत्र कुधियो पर इश कूर्युः कर्तुः प्रभोस्तव किमस्यत आवहन्ति त्यक्त ह्रियस्त्वद वरोपित कर्त्रिवादाः। कह रहे हैं कि क्रीडार्थमात्मन इदं त्रिजगत् कृतं ते, आपने जो ये त्रिजगत बनाया है ये आपका ही खेलने की भूमि, आपकी खेलने की भूमि है। आप अगर कुछ बनाते हैं, बहुत बड़ा घर बनाया, कई बार होता है ना किसी का घर बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा मैदान है या सामने खाली जगह है, तो मोहल्ले के बच्चे आ जाते हैं वहां क्रिकेट खेलने, ठीक है। इसका मतलब उन लोगों का हो गया क्या वो जगह, वो जगह बच्चों की हो गई क्या? नहीं ना। तो उनके तो क्रीडार्थम आत्मन इदम त्रिजगतम ते कृतम, आपने अपनी खेल के लिए, क्रीड़ा के लिए, लीला विलास के लिए जगत को बनाया है, मतलब सब कुछ आपका है। स्वाम्यम तु तत्र कुधियो पर इशकूर्युहु, और कर्तृत्वाभिमानी जो पुरुष होता है, मैं और मेरा, हमने किया है, यह कर्तृत्वाभिमान जीव का एक महत् दोष है, उसमें कर्तृत्वाभिमान आ जाता है और यह इतना सूक्ष्म है, इससे निजात पाना सिर्फ भक्ति के बल से या गुरु वैष्णव की कृपा से ही हो सकती है। जीव अपनी प्रतिष्ठा को नहीं छोड़ सकता, ये वस्तु तो सत्य है। भजन का बल हो, किसी वैष्णव की कृपा हो जाए, क्योंकि भक्ति सिद्धांत सरस्वती कहते हैं कनक कामिनी प्रतिष्ठा बाघिनी छड़िया छे जारे सहित वैष्णव। बहुत बड़ी बात है, सुनने में भले छोटा लगे, कनक चला गया, कनक छोड़ सकता है व्यक्ति, कामिनी भी छोड़ सकता है, लेकिन प्रतिष्ठा बाघिनी है, शेरनी है वो, तो प्रतिष्ठा की बीज रूप में भी आशा रह जाए तो पुनर्जन्म लेना पड़ेगा, यह है। अब कह रहे हैं कि तो जीव के अंदर ये स्वाभाविक ही है, क्योंकि है तो वही सच्चिदानंद के अंश ना। अब अग्नि का जो स्फुलिंग है उसमें भी दाहिका शक्ति और प्रकाशकत्व तो होगा ही ना, ताप शक्ति, भले इतना छोटा चिंगारी कहीं आग जल रही हो, अभी तो अंगीठी जलती है सर्दियों में, वहां से चिंगारी निकल के आती है, कई बार पैरों में लगता उफ, होता है कि नहीं, तो उसमें ताप शक्ति, दाहिका शक्ति, प्रकाशकत्व, वो सभी गुण विराजमान है जो अग्नि में होती है, ये सारे गुण उसी में भी विराजमान है। तो हम हैं तो भगवान के ही अंश ना, और भगवान कौन है? जगन्नाथ हैं, भगवान सर्वपालक हैं, नियंता हैं, हम अणु चैतन्य हैं, लेकिन है तो वही के कण ना। वो कहते हैं ना कि इसमें क्षत्रिय का गुण दिख रहा है, भले कितना भी पढ़ा लिखा पीएचडी हो लेकिन लड़ने के लिए तैयार हो गया, तो मतलब क्षत्रिय गुण उसका दिख रहा है। तो उसी प्रकार भगवान की कण होने के कारण हमारे अंदर थोड़ा सा प्रभुत्व का भाव रह जाता है और वो कर्तृत्वाभिमान हमें घेर लेती है। इससे बचने के लिए एकमात्र उपाय है गुरु वैष्णवों का मार्गदर्शन और भगवान की कृपा। देखिए विल्लो मंगलपाद क्या कह रहे हैं इस विषय पे, और ये बड़ा प्रासंगिक है ये बलिवामन चरित्र के साथ। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणाम च हृत्वा मम सर्वमेव पलायसे कोत्र धृतोऽद्य चौरः त्वं भक्तिदं नासि मया निरुद्धः। धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, हे प्रभु आपने मेरा धन हरण कर लिया है, है ना, दसम स्कंध के 89वें अध्याय में है ना कि यस्याहम अनुगृह्णामि हरिष्ये तद्धनम शनैहि, धीरे धीरे उसका धन हरण कर लेता हूं, तो क्या होता है फिर परिवार भी त्याग देता है। शंकराचार्य कहते हैं कि यावत वित्तोपार्जन सक्त तावत निज परिवार अनुरक्त पश्चात जीवति जर जर देहे, बुढ़ापा आ गया अब कमा नहीं सकता, वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, अब बुढ़ा से कोई नहीं पूछता कैसे हैं आप, अब पूछेंगे तो कहेंगे घुटने में दर्द है थोड़ा छोड़ दोगे तो इसलिए नहीं दूर रहो है ना। तो ये शंकराचार्य कह रहे हैं कि वार्ताम कोपी न पृच्छति गेहे, लेकिन वही अगर धनोपार्जन में समर्थ हो, धनोपार्जन करने की क्षमता हो, भले शरीर जर्जर हो गया हो, तो सर्वे वार्ताम पृच्छति, कुशलिनः वा, भवान कुशलिनः, आप ठीक तो है ना, सब कुछ सही है ना, और सेवा करने के लिए भी तत्पर हो जाते हैं। ये जगत का धर्म है, ये शंकराचार्य अपने उस भज गोविंद में कह रहे हैं। और यहां पे क्या कहा जाए कि धनम च मानम च, जब धन छूट जाता है तो परिवार छूट जाता है, सब आपको त्याग देते हैं। सड़क पे अगर कोई पड़ा हो और वो ये भी कह दे कि मुझे बचाओ मेरा कोई नहीं है, ऐसे तो शायद कोई कह दे, और अगर कह देगा मेरा कोई नहीं है तो लोग और डर जाएंगे, फिर तो पूरी जिम्मेदारी हमारे ऊपर आ जाएगी। तो धनम च मानम च, इस अवस्था को जो प्राप्त होता है मानसिक रूप से, धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि, अब दूसरा बड़ा शत्रु क्या है, न पंचेन्द्रिय, पंच ज्ञानेन्द्रिय, तो वो इंद्रियां भी आपके वशीभूत हो जाता है एकदम, वो है ना, सवई मन कृष्ण पदार विंदयो वचामसी वैकुंठ गुणानुवर्णने करो हरेर मंदिर मार्जनादिशु श्रुतिम चकाराच्युत सत्कथोदये मुकुंद लिंगा लय दर्शने दृशौ तद्भृत्त गात्र स्पर्शेंग संगमम घ्राणम च तत्पाद सरोज सौरभे श्रीमत तुलस्या रसनाम तदर्पिते। तो मेरे पांच इंद्रियां जब भगवान की ही सेवा में, भगवान के चरणों में अर्पित तुलसी दल का घ्राण लेने में, रसना आस्वादन करने में, भगवान के रूप को देखने के लिए मेरे आंखें निमग्न हो जाएं, कान भगवद वार्ता श्रुतिम चकारा च्युत सत्कथोदय, सत्कथोदय चकार, तो भगवान की जो कथा है वही एकमात्र सत्कथा है, बाकी सब असत कथा है, और मेरा कान उद्यग्र रहे, हमेशा उसमें समर्पित रहे भगवत कथा सुनने के लिए, इससे अतिरिक्त कोई वार्ता में रुचि ही ना हो, तो मैं धन्य हो गया। तो वही कह रहे हैं कि धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणाम च हृत्व, अब क्या रह गया, प्राण, तो प्राण को हरण करना, कुछ लोग समझते हैं कि भगवान मार भी डालेंगे, अब प्राण को हरण करने का यह तात्पर्य नहीं होता है कि वो अब इस समाज के लिए कुछ लायक नहीं रहता है। जब कोई संन्यास ग्रहण करते हैं, ब्रह्मचारी हो जाते हैं, उसका देयर इज अ सोशल डेथ, वो अब समाज के लिए नहीं रहा ना, वो भगवान के लिए, गुरु वैष्णव मठ आश्रम के लिए ही होता है, वो समाज के लिए अब कोई उपयोगी नहीं रहता, इस यही अर्थ है ना गैरिक वस्त्र का। तो प्राण उन्होंने समर्पित कर दिया भगवान को, हाँ, अब उनके अलावा उनका कोई उद्देश्य रहा ही नहीं। तो वही कह रहे हैं धनम च मानम च तथेन्द्रियाणि प्राणाम च हृत्वा मम सर्वमेव, आपने तो सब कुछ ले लिया, लेकिन कह रहे पलायसे कुत्र, अब चोर क्या करता है, सामान लेके भाग जाता है, वो दोबारा थोड़ी मिलता है आपसे, लेकिन ये कह रहे हैं आप चुरा तो लिए हैं और आप चोरों में सर्वश्रेष्ठ हैं, लेकिन पलायसे कुत्र, कहां पलाओगे। देखिए पलायसे मध्यम पुरुष का प्रयोग है, भगवान के साथ भक्तों की जितनी भी वार्ता होती है मध्यम पुरुष, मध्यम पुरुष माने हम जिसको तुम कहते हैं, भगवान को कभी आप नहीं कहा जाता, और ब्रज भाषा में आप शब्द है ही नहीं, तमकु तुमको बोलते हैं, ये आप शब्द है ही नहीं ब्रज भाषा में, जिसको हम थर्ड पर्सन कहते हैं ना, या प्रथम पुरुष संस्कृत में, वो है ही नहीं ब्रज भाषा में। तो एक मैं किसी से बात करूं, तुमसे मैंने उस दिन कहा था, मैं इसी ब्रजभाषी ऐसे शुरू करते हैं, तुमको हमने कहा था तो तुमसे ही शुरू करते हैं, तो ये भगवान का भाव है। तो भगवान के भक्त भी कह रहे हैं पलायसे कुत्र, कहां तुम भागोगे, त्वम भक्ति दमनासी मया निरुद्ध, मैं भक्ति रूपी दाम यानी रज्जू से तुमको बांध लूंगा। अब कह रहे हैं जो अगला लाइन, वो ऐसे उत्तम अधिकारी विल्वमंगल पाद जैसे रसिक भक्त ही कह सकते हैं, सामान्य भक्त नहीं कह सकता है। वो कह रहे हैं कि मद भक्ति पाश दृढ़ बंधन निश्चल हसन, त्वाम कृष्ण हे प्रलय कोटि शतांतरेपि सर्वस्व चौर हृदया नहीं मोचयामी। तो मद भक्ति मेरा जो भक्ति रूपी पास है बड़ा दृढ़ है, बहुत मजबूत रस्सी से बांधूंगा तुम्हें, तो तुम भाग नहीं पाओगे। और प्रलय कोटि शतांतरेपी, शतक कोटि, सौ करोड़, सौ सौ करोड़ प्रलय तक, नित्य नैमित्तिक प्रलय तक, सर्वस्व चोर, आप और भी चुरा लो, और भी कुछ लगता है आपको चाहिए तो चुरा लो, लेकिन हृदयान नहीं मोचयामी, मेरे हृदय से मत निकलना। फिर क्या कह रहे हैं कि मनमानसे तामशराशि घोरे कारागृहे वस सदा दुखमये निबद्ध लभस्व हे चोर हरे चिराय स्वचोर्य दोषो चितमेव दंडम। तो मेरा जो मन है ये अंधकारमय कारागार है, इसमें अज्ञानता ही भरी हुई है, इससे अतिरिक्त कुछ नहीं है। तो जब तक ये अज्ञान को दूरीभूत ना हो जाए तब तक आप हृदय में ही विराजमान हो, मतलब जब तक मैं आपके समक्ष आपके धाम में आपका ही संसर्ग प्राप्त ना हो तब तक आप मेरे हृदय से मत निकलना। तो यहां पे धनम च मानम च सब कुछ हरण की बात आई है। तो चलिए, वैष्णव संगेत मन आनंदित अनुक्षण सदा हाय कृष्ण परसंग। तो आप सभी के अनुकंपा से और हिज ग्रेस धर्मात्मा प्रभु जी की कृपा से बीच बीच में शास्त्र अनुशीलन का हमें अवसर प्राप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्ण।